राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन वास। राधा तो बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आरे। जय राधा माधव कुंज बिहारे,
जय राधा माधव कुंज बिहारे,
जय राधा माधव कुंज बिहारे,
जय राधा माधव कुंज बिहारे।
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे,
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 जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
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 यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वन चारे,
यमुना तीर वन चारे,
यमुना तीर वन चारे,
यमुना तीर वन चारे।
जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे,
जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे,
जय यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीर वन चारे,
यमुना तीर वन चारे,
यमुना तीर वन चारे,
यमुना तीर वन चारे।
जय राधा माधव कुंज बिहारे। साक्षी गोपाल में राधा रमण जी द्वारकाधीश जी त्रिपलेश्वर महादेव गंगेश्वर महादेव राधे 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 बरसाने वाले राधे 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 बरसाने वाले राधे
राधे राधे
राधे राधे राधे बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे हा राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोलो राधे 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 वृंदावन में काली देहा पर पान गली में मान गली में कुमन गली में कुंज सेवा में प्रेम गली में सिंगार घाट में चीर घाट में पेशी घाट में निधि वन में वंशीवट में ज्ञान गोधरी ब्रह्मा कुंड में अटल वन में निहार वन में चरण वन में गोपाल वन में रूप में, निकुंज वन में, झूलन वन में, पांडिर वन में, मधुवन में, सूर्य घाट में, युगल घाट में, बिहार घाट में, अंधेर घाट में, पानी घाट में, मथुरा जी में, स्वामी घाट में, मधुकुंड में, अक्रूर भवन में, ताल वन में, कुमुद वन में, वराई गांव में, बौला वन में, संतन कुंड में, तेरा गांव में, कुछड़ी का लोटा, इंद्रा कुंड में, सूरभि कुंड में, ऐरावत कुंड में, हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे,
राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा,
जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा,
गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु पद,
प्रभु पद प्रभु पद
जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु पद,
जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु पद,
जय जय प्रभु पद
प्रभु
पद प्रभु पद प्रभु पद,
जय जय प्रभु
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल,
श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री श्री गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद की
जय,
निताय गौर प्रेमानंद
हरि बोल,
ओम नमः। नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवतम स्कंध पांच अध्याय पांच श्लोक क्रमांक एक। आप सबके पास श्लोक दिया गया है, कृपया उसमें देखिए और मेरे पीछे दोहराइए। श्री ऋषभ उवाच।
ऋषभ उवाच।
नायं देहो देह भाजां त्रिलोके।
नायं देहो देह भाजां त्रिलोके।
कष्टान् कामान् हते वीट भुजां ये। तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्।
तपो दिव्ये पुत्र कायेन सत्वेन।
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्।
शुद्धे असार्तं ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्।
नायं देहो देह भाजां त्रिलोके।
नायं देहो देह भाजां त्रिलोके।
कष्टान् कामान् हर्ते वीट भुजां ये।
कष्टान् कामान् हर्ते भुजां ये।
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्।
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्।
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्।
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्।
नायं देहो देह भाजां त्रिलोके।
नायं देहो देह भाजां त्रिलोके।
कष्टान् कामान् हर्ते वीट भुजां ये।
कष्टान् कामान् हर्ते वीट भुजां ये।
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्।
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्।
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्।
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्।
नायं देहो देह भाजां त्रिलोके।
नायं देहो देह भाजां त्रिलोके।
कष्टान् कामान् हते विद्भुजां ये।
कष्टान् कामान् हते
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्।
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्।
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्।
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म
करारविन्दे न पदारविन्दम्। मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटास्य पात्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत में तदेव गोविंद दामो दरमाधवेति हरे कृष्णा
हरे कृष्णा।
तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बहुत सारे हमारे वरिष्ठ भक्त यहाँ पर आए हैं, दूर दूर से भक्त आज यहाँ पर पधारे हैं। सभी भक्तों का विशेष स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है जीवन का कुछ क्षण भगवत कथा में व्यतीत होने जा रहा है। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
यूं तो जीवन बीत रहा है भगवत विमुख रसों से। संसार का जो समय है भौतिक वार्तालाप में बीत रहा है, परंतु श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे जीवन का कुछ क्षण भगवत स्मरण और शुद्ध पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में हम बिता रहे हैं। कल हमने श्रवण किया, समस्त वेद शास्त्र उपनिषद और पुराणों का जो फल है वो है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम सभी ग्रंथों का राजा है, और यदि कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत का श्रवण और पठन कर लेता है तो उसे अन्य कुछ पढ़ने की और समझने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि भागवत अल्टीमेट नॉलेज है। श्रीमद् भागवत में पूर्ण ज्ञान का निरूपण हुआ है, क्योंकि यह भागवत और कुछ नहीं, यह भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है। भगवान और भागवत में कोई अंतर नहीं है। जैसे भगवान को समझने के बाद अन्य कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृष्णा इज रूट ऑफ एवरीथिंग। भगवान जो है इस संसार के सभी वस्तु के मूल है, स्रोत है। जब आप मूल के बारे में जान लेते हो तो मूल से प्रकट हुई सारी वस्तु का ज्ञान हो जाता है। वैसे ही आप भगवान और भागवत के विषय में जान लेते हो तो संसार की समस्त वस्तु का तत्व ज्ञान हो जाता है। तो यह भागवत वेदों का फल है। श्रीमद् श्री वेद व्यास जी ने इस भागवत को निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम कल्प तरु का अर्थात समस्त वेद वेदांत का गलितम फलम कहा है। गलित का अर्थ होता है पका हुआ फल, क्योंकि जब हम हमारे मन में फल का स्मरण करते हैं तो तुरंत प्रश्न होगा कि फल तो दो प्रकार के होते हैं, कच्चा और पक्का। ये भागवत कैसा फल है, कच्चा है कि पक्का है? क्योंकि फलों का राजा जो है आम, मैंगो। मैंगो यदि आम यदि कच्ची हो तो खट्टी लगती है, परंतु आम पक जाए तो बहुत मधुर लगती है। तो यह श्रीमद् भागवत जो है समस्त वेद पुराण का पका हुआ फल है, अत्यंत मधुर है। और जब यह फल सुखदेव गोस्वामी के मुख से स्पर्श हुआ, शुक मुखादये अमृत द्रव संयुतम, तब तो यह मधुराति मधुर हो गया। आप जानते हो, और हमारे संसार में एक मान्यता है कि जिस फल को तोता चख लेता है वो फल मीठा हो जाता है, या जो फल मीठा होता है उसी फल को तोता चखता है, कुछ भी हो। परंतु तोते के द्वारा खाया हुआ फल बहुत मीठा होता है। यह भागवत ग्रंथ मधुर था ही, परंतु सुखदेव के मुख से जब स्पर्श हुआ तब तो यह मधुराति मधुर हो गया। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं इस भागवत को पीजिए, पिबत भागवतम। भक्तों, इस भागवत को हमें पीना है, खाना नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं कि अन्य जो फल होते हैं उसमें गुठली और छिलका होता है, तो क्या भागवत में भी कुछ गुठली और छिलका है? भागवत में भी कुछ ऐसी वस्तु है जिसको त्यागना पड़ेगा, त्याज्य है? भागवत को पीना है। प्रश्न होगा कि भागवत में से भी कुछ निकालना होगा? वेद व्यास जी कहते हैं नहीं, भागवत फल नहीं, बना बनाया जूस है, अमृत द्रव है। और यदि आपको जूस दे दिया जाए तो मात्र बस उसको पीना है, पीबतम। पीने में और खाने में क्या अंतर है? देखिए, इस संसार में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के बहुत सारे रास्ते हैं। परम सत्य को जानने के लिए, भगवान की प्राप्ति करने के लिए अनेक मार्ग हैं, परंतु यह भागवत श्रवण करने का मार्ग जो है सबसे आसान है। यह कैसा है? यह पीने के बराबर है। और अन्य जितने मार्ग हैं सब खाने के बराबर है। क्या अंतर है खाने में और पीने में? जब हम रोटी सब्जी दाल भात खाते हैं तो उसमें परिश्रम होता है ना। हमारे गुरु महाराज अक्सर सुनाते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण बहुत मेहनत करके घर पर आए और उनकी पत्नी ने बहुत सुंदर भोजन बनाकर रखा था, कहा भूख लगी है। पत्नी ने उस ब्राह्मण को भोजन परोसा, एक हाथ से भोजन परोस रही थी, दूसरे हाथ से पंखा जल रही थी। पहले के जमाने में वो फैन और एसी नहीं था, वो हाथ का पंखा होता था, हैंड फैन। तो ब्राह्मण की पत्नी एक हाथ से पंखा जल रही थी, दूसरे हाथ से भोजन परोस रही थी। ब्राह्मण मस्ती से खा रहा था लेकिन पसीना निकल रहा था। तब पत्नी ने कहा, बुरा ना लगे तो एक बात कहूं पतिदेव? कहिए। देखो, 3 घंटे से भोजन मैं बना रही हूं, एक हाथ से भोजन मैं आपको परोस रही हूं, दूसरे हाथ से पंखा मैं आपको जल रही हूं, तो पतिदेव पसीना आपको क्यों आ रहा है? मेहनत तो मैं कर रही हूं। तब ब्राह्मण बोले, चबा कौन रहा है, तेरा बाप? लो, ब्राह्मण को चबाने में पसीना आ रहा था। होता है, चबाने में भी कष्ट है। वैसे ही संसार के अन्य जितने भी साधन है सब चबाने के बराबर है, कष्ट वाले। जैसे आप तपस्या को ले लीजिए, आज तपस्या करना कितनी मुश्किल है। साल में एक दिन पांडव एकादशी आती है जिसमें निर्जला करनी होती है, उसमें भी नानी मर जाती है। एक दिन निर्जला, उसमें क्रिकेट देखते हैं, टीवी देखते हैं, यार टाइम पास कर रहा हूं, दिन नहीं जा रहा है, क्या तपस्या करेंगे। ये तपस्या का मार्ग कष्टदायी है। दान का मार्ग, जेब से 10 रुपया किसी को देना 100 बार व्यक्ति सोचता है दू ना दू, दू ना दू, क्या दान करेगा। ध्यान तो हो ही नहीं सकता है कलयुग में, परंतु यह भागवत श्रवण करने का जो मार्ग है पीने के बराबर है, कोई कष्ट नहीं। बना बनाया जूस है, न चबाना है, न काटना है, न तोड़ना है, बिल्कुल फ्रेश जूस है भागवत, केवल पिबतम, पीते रहो। बताइए, मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, किसी को कष्ट हो रहा है? थोड़ा बहुत होता होगा बैठने में, क्योंकि जगह बहुत कम है, लेकिन अन्य अन्य मार्गों में, साधनों में कितना कष्ट है। और उसमें भी 1 घंटे के बाद बहुत सुंदर प्रसाद आपका इंतजार कर रहा है। कितना सुंदर मार्ग है जिसमें नाचना है, गाना है, एंजॉय करना है, चैंटिंग, डांसिंग, फिस्टिंग। और अन्य मार्गों में कितनी तपस्या है, रात दिन भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। भागवत पिबतम, तब मन में प्रश्न होता है यह भागवत कितना पीना चाहिए, आधा घंटा, 1 घंटा, ये भागवत कितना सुनना है। तब वेद व्यास जी लिखते हैं, रसमालयम पिबत भागवतम रसम आलयम। जब तक आलय का अर्थ होता है प्रलय, प्रलय का अर्थ है मृत्यु, जब तक यह देह छूट नहीं जाता है, जब तक मृत्यु नहीं आ जाती है, तब तक इस भागवत को पीते रहिए, सुनते रहिए। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं, हमारे कई सारे भक्त ये कथा का इन्विटेशन देने गए थे, कुछ लोग कहते हैं हमने तो भागवत कथा सुन लिया है, तो उसे कहना चाहिए आपने भोजन भी कर लिया है, जीवन में दूसरी बार मत करना। ये भागवत नित्य निरंतर, नित्यम भागवत सेवाया, निरंतर पीते रहना चाहिए, क्योंकि श्रवण कीर्तन जले करय सेचन। हमारी जो भक्ति है यह भक्ति इसी भागवत का श्रवण और कीर्तन करने से बढ़ेगी, नहीं तो भक्ति रूपी लता का नाश हो जाएगा। पिबत भागवतम रसम आलयम, पीते रहिए, कब तक मृत्यु ना आए तब तक। तब अंत में एक प्रश्न हो सकता है, कितना पिएंगे? संसार में कितना भी अच्छा ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक या हार्ड ड्रिंक जो भी, कितना भी फेवरेट जूस हो आपका, कितना ग्लास पियोगे? मान लो आप 1 महीने से भूखे हैं, आपको भूख लगी, आप रसगुल्ला खाने बैठे, 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3, 4, 5, 6, 50, 60, 70, अब कितना खाओगे? एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें उबन आ जाएगी, फिर आप 1 साल तक रसगुल्ला नहीं खाओगे। तो क्या भागवत में भी ऐसा होता है, बारंबार पीने से उबन नहीं आ जाएगी? तब वेद व्यास जी कहते हैं, मुहु रहो रसिका भूवि भावुका। यह भागवत जो है रस से भरा हुआ है, यह भागवत आप जितना सुनोगे उतना आनंद आता जाएगा। जैसे भगवान कहते हैं, आमार माधुर्य नित्य नव नव है, मेरा माधुर्य नित्य नवीन। आप जितनी बार सुनोगे उतनी बार यह भागवत नित्य नवीन लगता जाएगा। और संसार की जो कथा है, संसार के जो गाने हैं, आज न्यू है तो 10 दिन के बाद ओल्ड हो जाएंगे। वो धूम मचा ले आए थे ना बीच में, बहुत धूम मचाई, अब तो खो गया गाना, अब तो कहीं सुनाई भी नहीं देता है। तो संसार के गाने की ज्यादा धूम नहीं मचती है, कुछ दिन रहते हैं फिर वो ओल्ड हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। परंतु भागवत यद्यपि सबसे पुराना ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत पुराण नहीं महापुराण, परंतु यह भागवत सबसे पुराना होते हुए भी नित्य नवीन है। नित्य नवीन नवीन आनंद प्राप्त होता है। यत् श्रुणुताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे, इस भागवत के प्रत्येक अध्याय में, प्रत्येक स्कंद में, प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक शब्द में आनंद बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप देख सकते हो संसार में अन्य कई भी जगह पर लोग जुटते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग होते हैं। जैसे नेता का भाषण यदि 7 दिन का हो तो पहले दिन बहुत सारे लोग होते हैं, दूसरे दिन भी थक जाते हैं उसका सुन सुन कर, दूसरे दिन कम हो जाते हैं, तीसरे दिन और कम हो जाते हैं, चौथे दिन और कम, फिर एक नेता ही बचता है, उसके परिवार वाले भी नहीं होते हैं। संसार के अन्य किसी भी जगह में, किसी भी फील्ड में आप देखिए, कहीं नया मॉल खुला है तो पहले दिन बहुत सारे लोग होंगे, फिर धीरे 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 कम होते जाएंगे। इस संसार में सभी जगह पर जब नया फिल्म आता है तो हाउसफुल होता है, फिर धीरे 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 कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे उसकी महिमा जो है घटती जाती है। परंतु भागवत देखिए, पहले दिन कम लोग होते हैं, दूसरे दिन और बढ़ते हैं, तीसरे दिन और ज्यादा, चौथे दिन और ज्यादा, और धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि भागवत जो है धीरे धीरे करके और रसिक और आनंद देने लगता है। भागवत जितना सुनते हैं उतना आनंद बढ़ते जाता है, आनंद का वर्धन होता है। प्रतिपदम पूर्ण अमृत आस्वादनम। और इस संसार की जो भौतिक कथा है, भौतिक वस्तु है, उसमें आनंद घटता जाता है। तो भागवत जो है परम आनंद प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, केवल इस लोक का ही नहीं परलोक का भी सुख प्रदान करता है और पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है। गत सत्र में हमने सुना किस प्रकार से इस भागवत का अवतरण हुआ। यह भागवत और कुछ नहीं वेद व्यास जी के समाधि की भाषा है। वेद व्यास जी समाधि में बैठकर जो भी स्मरण किए ये श्रीमद् भागवत में, वेद व्यास जी के जीवन की अंतिम कमाई। कल एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, मैंने पूरा जवाब नहीं दिया, कहा कि अन्य ग्रंथ क्या नहीं पढ़ सकते हैं। वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत लिखने से पहले बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत पुराण लिखे, क्या वह नहीं पढ़ सकते हैं? किम श्रुते बहुर्भिः शास्त्रे पुराणेश भ्रमावहे, इस भागवत पुराण के पहले वेद व्यास जी ने जो भी लिखा यदि हम उसको पढ़ते हैं तो मन में एकमात्र भ्रांति उत्पन्न होती है, सुख शांति और आनंद नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वह सब ग्रंथ लिखकर स्वयं वेद व्यास जी सुखी नहीं हुए तो हम कैसे सुखी हो सकते हैं। फिर भी कुछ लोगों की एक जिज्ञासा, एक संशय बन जाता है कि वेद व्यास जी ने अन्य पुराण में यह लिखा कि शिव जी भगवान है, ये पुराण श्रेष्ठ है। परंतु शास्त्र का एक नियम है, पाणिनि जी के व्याकरण का एक नियम है, व्याकरण में किसी भी पाठ में या किसी भी श्लोक में पूर्व पक्ष से उत्तर पक्ष बलिष्ठ होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है या कोई ग्रंथ लिखता है तो उस ग्रंथ में पहले जो लिखा है उससे कई गुना बलिष्ठ अंत में होता है। अर्थात अंत में जो भी वस्तु कही जाती है वह आगे की वस्तु का सार होता है। जैसे अक्सर मैं दृष्टांत देता हूं, मान लो मैं कहूं कि यहां पर एक रमेश लड़का है, वह अच्छा लड़का नहीं है, उसका स्वभाव बहुत खराब है, उसका आचरण बहुत खराब है, उसके साथ कभी मत रहना, उसके साथ बात भी मत करना, उसके सामने देखना भी मत, लेकिन अंत में कह दूं नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, वो बहुत अच्छा लड़का है, अब क्या समझोगे? पहले मैंने बहुत कथा बताई, बहुत चीज लिखा, बहुत बताया, रमेश ऐसा है वैसा है वैसा है, लेकिन अंत में मैंने लास्ट लाइन में जो कहा वो सारी बात को काट देता है। वैसे है वेद व्यास जी ने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा, परंतु अंत में वेदव्यास जी के जीवन का अंतिम ग्रंथ अंत में ये भागवत महापुराण लिखा। और भागवत महापुराण जो है, अन्य जितने भी पुराण है सभी पुराणों का सार है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सार को ग्रहण करता है, एसेंस ग्रहण करता है। तो परम सौभाग्य है कि हम सभी स्क्रिप्चर का जो एसेंस है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव की शिक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। वेदव्यास जी ने यह भागवत का निर्माण किया। फिर वेदव्यास जी सोच रहे थे कि यह भागवत तो मैंने निर्माण किया परंतु मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्योंकि जब तक वेदव्यास जी भागवत का निर्माण किए तब तक वे बूढ़े हो गए थे। तो भगवान की कृपा से वेदव्यास जी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिस पुत्र का नाम था सुखदेव गोस्वामी। और सुखदेव गोस्वामी ने इस भागवत को पढ़ा और इस भागवत को पढ़कर महाराज परीक्षित को सुनाया। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवत सुना रहे हैं। सुनाते सुनाते परीक्षित महाराज एक जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा क्या है?
प्रियव्रतो भागवत आत्मराम कथं मुने गृहे रमतयन मूल कर्म बंध पराभव।
परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को एक जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या जिज्ञासा है? कि हे मुनि, महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को मुनि कहते हैं। सुखदेव गोस्वामी वास्तव में मुनि थे। मुनि का अर्थ क्या है? श्रीपाद सिद्ध स्वामी कहते हैं मुनय मननशीला। मुनि का अर्थ होता है मननशील, जो बहुत मनन करे उसे मुनि कहते हैं। परंतु वो मनन जो है भगवान के विषय में। इस संसार में भी कुछ लोग बहुत मनन करते हैं, शेयर बाजार का मनन करते हैं, अपने बिजनेस का मनन करते हैं। तो जो धन का मनन करते हैं उसे मुनि नहीं, उसे तो मुनिम कहते हैं। परंतु जो भगवान का, भगवत कथा का मनन करता है वो मुनि है, जिसके मन में भगवान रमे रहते हैं। ऐसे सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित कहते हैं। कहे सुखदेव गोस्वामी प्रियव्रतो भागवत। ये जो प्रियव्रत नाम के मनु महाराज के पुत्र हैं, वो बहुत बड़े भक्त थे और उसी के साथ साथ आत्मराम, और उसी के साथ साथ राजा प्रियव्रत आत्मराम थे। आत्मराम अर्थात अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले, अर्थात सुख प्राप्त करने के लिए बाहर कोई परिश्रम नहीं, बस अकेले में अपने आत्म ज्ञान में ही आत्मा में रमण करने वाले। राजा प्रियव्रत आत्मराम थे, भगवान के शुद्ध भक्त थे। तो कृतम गृहे रमत, इतने शुद्ध भक्त और अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले होने के बावजूद महाराज प्रियव्रत ने विवाह क्यों किया? तो क्या जो भगत होते हैं वो विवाह नहीं कर सकते हैं? परीक्षित महाराज कहते हैं भक्त थे तो विवाह क्यों किया? और गृहे रमत, वास्तव में विवाह करना कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु विवाह करके उस गृहस्थी में आसक्त हो जाना ये बहुत बुरी चीज है। कहते हैं जिस गृहस्थी में फंसकर कर्म बंध पराभव, जिस गृहस्थी में फंसकर व्यक्ति कर्म बंधन में बंधता जाता है, और पराभव अपने स्वरूप को खो देता है, भूल जाता है वह खुद क्या है। कहते हैं ऐसे गृहस्थी में महाराज प्रियव्रत क्यों फंस गए। परीक्षित महाराज की राजा प्रियव्रत के विषय में जिज्ञासा, और सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर कथा प्रारंभ करते हैं। कथा की भूमिका इस प्रकार से है, भगवान श्री विष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड का जन्म होता है। भगवान महाविष्णु कारुदक्षायी विष्णु कारण समुद्र में शयन करते हैं और उनके अनंत रोम कूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और उस एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदकशायी विष्णु प्रकट होते हैं। उस गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट होता है, और मित्रों वह महान विशाल कमल की जो डंडी है उस डंडी में 14 भुवन है। उस 14 भुवन के बीच में पृथ्वी, पृथ्वी के नीचे अतल वितल तलातल पाताल रसातल, पृथ्वी के ऊपर जन लोक मर लोक तप लोक सिद्ध लोक स्वर्ग लोक ब्रह्म लोक। तो भगवान विष्णु की नाभि से यह कमल प्रकट हुआ, और कमल से इस संसार में सबसे पहला जीव प्रकट हुआ। देखिए सृष्टि के प्रारंभ में कुछ नहीं था, न हम थे न आप थे, ये सृष्टि कैसे चली पूरा एव बहुत पहले की ये बात है। मात्र ब्रह्मा जी प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी भी यह नहीं जानते थे मैं कौन हूं, हुए माय, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, कुछ नहीं पता था। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने उस कमल की डंडी में नीचे देखा, और देखकर उस डंडी में नीचे उतरे, पूरा डंडी में 14 लोग की सैर किए लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर से कमल के ऊपर आ गए, तो उतने में ब्रह्मा जी ने एक आवाज सुनी, तप तप तप। ब्रह्मा जी समझ गए कि निश्चित भगवान की इच्छा है कि मैं तपस्या करूं। देखिए ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव कितने इंटेलिजेंट है, कितने बुद्धिमान है, कहीं से सुन लिया तप तप, समझ गए तपस्या करना है। और यहां ये साधु लोग, ये गुरु जी, ये प्रभु जी बार बार कहते हैं, लगातार कहते हैं तप तप, जपिए लीजिए भगवान का नाम लीजिए, लेकिन यहां कोई फर्क नहीं। परंतु ब्रह्मा जी बुद्धिमान थे, तपस्या की, और ब्रह्मा जी की तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, और प्रकट होकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसरी बजाई, और भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसरी के नाद से उनके पास जो भी ज्ञान था वह सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दे दिया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस आदि कवि सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा को भगवान ने सारा ज्ञान दे दिया। आप लोग कहोगे यार थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए चड्डी पहन के स्कूल में जाना पड़ता है, एक दिन में ABCD, दूसरे दिन में ये, तीसरे दिन 10-15-20 साल के बाद भी पूरा ज्ञान नहीं होता है। और ये 2 मिनट में कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान, इसे आज की तारीख में समझना मुश्किल नहीं है। आज इस बात को सब लोग समझ सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर युग आ गया ना। जैसे यार मेरी हार्ड डिस्क खाली है, तेरे हार्ड डिस्क में बहुत कुछ है, तो वहां से कॉपी करता है यहां पेस्ट कर देता है। वैसे भगवान ने ही अपने में जो भी था उसे कॉपी करके ब्रह्मा जी में पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट, बाकी सब वेस्ट। तो भगवान श्री कृष्ण ने सारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया। देखिए ज्ञान 2 प्रकार से आता है, एक तो आंखें फोड़ फोड़ कर पढ़कर मेहनत करके, और दूसरा गुरु और भगवान की कृपा से। और गीता में तो भगवान और श्री प्रभुपाद जी यहां तक कहते हैं कि केवल ये किताब पढ़कर, किताब पढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, परंतु यदि भगवान और गुरु को प्रसन्न कर लेते हो तो ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ साथ विज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। हमारे शास्त्र में, हमारे इतिहास में आरुणी नाम के एक स्टूडेंट थे, विद्यार्थी। एक बार गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। गुरुजी बहुत सारे विद्यार्थी को पढ़ा रहे थे। एक दिन गुरुजी ने आरुणी को सेवा प्रदान की, आप एक काम करो, गुरुकुल से थोड़े दूर एक खेत था, उस खेत में ज्यादा पानी न आ जाए इसलिए पानी के ऊपर पाली बांध कर आ जाओ, मिट्टी की पाली, मिट्टी की थोड़ी सी दीवार करके आ जाओ। ये आरुणी नाम का विद्यार्थी खेत में गया और मिट्टी की दीवार बनाने गया, उसी समय बारिश हुई। जैसे ही दीवार बनाता, बारिश के कारण वह दीवार खुल जाती और पानी खेत में चला जाता। बहुत प्रयास किया, लगातार प्रयास करते गया, परंतु वो पानी रुका नहीं। अंत में आरुणी खुद वहां पर अपने शरीर को लेटा दिया और सो गया, पानी को रोक दिया। यहां गुरुकुल में पूरी रात बीत गई, सुबह हुई, गुरुजी ने देखा आरुणी घर पर नहीं आया, गुरुकुल में नहीं आया। गुरुजी अपने सभी शिष्य को लेकर गए, आरुणी कहां हो, कहां हो? तो आरुणी ने सोए सोए जवाब दिया, गुरुजी यहां हूं, यहां आइए। गुरुजी गए, देखा कि आरुणी सो रहा था। बहुत सारे शिष्य साथ में थे, आरुणी से पहले भी, आरुणी से 10 साल पहले के कुछ विद्यार्थी थे। गुरुजी ने देखा कि आरुणी सो रहा है, पूछा कि आप यहां क्यों सोए हो? तो आरुणी ने इतना ही कहा, गुरुजी आपका आदेश था कि जाओ और दीवार बांध कर आओ, लेकिन बारिश के कारण मिट्टी रह नहीं रही थी, तो गुरुजी आपकी आज्ञा थी, कैसे ठुकराऊं, मैंने मेरे शरीर की ही दीवार बना दी। तब गुरुजी ने कहा, आरुणी तुमने मेरे आदेश का पालन किया है, आज से तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, समस्त वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाए। गुरुजी के मुख से यह निकल गया और आरुणी के हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान प्रकट हो गया। उस दिन से उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, कृपा से, सेवा से, आशीर्वाद से ज्ञान मिलता है। ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ज्ञान प्राप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी, ब्रह्मा जी अब इस ज्ञान को लेकर आप सृष्टि का सर्जन करो। साथ ही साथ भगवान ने विशाल मात्रा में पंच महाभूत प्रदान की। उस ज्ञान को लेकर ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम 84 लाख की योनि का निर्माण किया। धीरे धीरे ब्रह्मा जी सृष्टि करते गए, प्रजा की उत्पत्ति करते गए। वर्णन है, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 पुत्र को जन्म दिया और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप 10ों विवाह कर लो और प्रजा की उत्पत्ति करो। परंतु 10ों पुत्र ने कह दिया, पिताजी हम लोग विवाह नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी की भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ। क्योंकि वह बालक रोते रोते जन्म लिया, इसलिए उस बालक का नाम रुद्र हुआ, शिव जी। शिव जी ने कहा, पिताजी मेरे लिए क्या आज्ञा है? क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि के मैनेजमेंट में लगे हुए थे, इसलिए कहा, बेटा तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है तो एक काम करो, प्रजा की उत्पत्ति करो, संसार की सृष्टि। शिव जी ने कहा, नो प्रॉब्लम। शिव जी गए अपने धाम में, सृष्टि तो प्रारंभ किए, परंतु अद्भुत सृष्टि प्रारंभ हुई। भूत, पिशाच, रुद्रगण, इतने खूंखार लोगों को जन्म दिया, धीरे धीरे कैलाश लोक से ब्रह्म लोक में पहुंचे ये भूत पिशाच, और ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत मोबाइल लगाया, ए शिव जी ऊपर आओ, ऊपर आओ, मैंने सृष्टि करने कहा था, लेकिन ऐसी सृष्टि करने नहीं कहा था, जेन्युइन सृष्टि करने का, बंद करो, बंद करो ये सृष्टि, एक काम करो, मैं तुम्हें प्रलय का डिपार्टमेंट दे देता हूं। शिव जी को सृष्टि करने के लिए रोक दिया। ब्रह्मा जी सोचने लगे, अब क्या करूं, तब ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों भुजा से, एक भुजा से मनु महाराज को उत्पन्न किया और दूसरी भुजा से शत्रुपा को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा ये दोनों मनुष्य को जन्म किया और दोनों संतान को, एक स्त्री और एक पुरुष, ये दोनों को प्रजा की उत्पत्ति करने का आदेश दिया कि आप प्रजा की उत्पत्ति करो। देखिए अब तक मैथुनी सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई थी, अब तक जो भी सृष्टि हुई मात्र ब्रह्मा जी से, बिना किसी स्त्री के सहाय। परंतु अब ब्रह्मा जी मनु और शत्रुपा को मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करने के लिए कह रहे हैं और इस मनु और शत्रुपा से जो सृष्टि हुई, मनु और शत्रुपा के जो भी संतान हुए वह सभी संतान मनुष्य हुए। वास्तव में ये मनुष्य की उत्पत्ति जो है मनु और शत्रुपा से होती है। आज के लोग, हम तो पढ़े हैं तीसरी कक्षा में डार्विंग का सिद्धांत, डार्विंग जी कहते हैं कि देखिए ये मनुष्य कैसे बने, बच्चों को सिखाते हैं पहले से हम सब बंदर थे लेकिन ये बंदर फिर दो पांव पर चलने लगे, फिर धीरे धीरे शरीर से बाल कम हो गए, वो पूंछ भी चली गई, फिर धीरे धीरे करके हम लोग मनुष्य हो गए। आपके बाप दादा कौन थे, तो बच्चे कहते बंदर। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, गलत उपदेश है। वास्तव में मनुष्य की उत्पत्ति मनु और शत्रुपा से हुई, इसलिए आप देखिए हम सबको मनुष्य क्यों कहा जाता है। हम सब मनुष्य इसलिए हैं क्योंकि मनु से हमारा जन्म हुआ है। मनुष्य को मानुज कहा जाता है, क्यों? ज का अर्थ होता है जन्म और मानु का अर्थ होता है मनु महाराज। तो मनु महाराज, मनु और शत्रुपा से संसार के सभी मनुष्य प्रकट हुए। सबसे पहले ये मनु और शत्रुपा की पांच संतान हुई, मनु और शत्रुपा ने पांच संतान को जन्म दिया जिसमें तीन कन्या और दो पुत्र। तीन कन्या का नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति। और मनु महाराज से जो दो पुत्र हुए, एक पुत्र का नाम उत्तानपाद, जिसकी कथा भागवत के चौथे स्कंद में उत्तानपाद के पुत्र हुए ध्रुव, ध्रुव की कथा है। और ये मनु और शत्रुपा के जो दूसरे पुत्र थे जिसका नाम था प्रियव्रत, और उस प्रियव्रत के विषय में महाराज परीक्षित ने प्रश्न पूछा है कि ये प्रियव्रत जन्म से ही भगवान के परम भक्त और आत्मराम होकर भी विवाह क्यों किया। वास्तव में मनु महाराज के ये जो पुत्र थे प्रियव्रत, विवाह करना नहीं चाहते थे क्योंकि नारद मुनि उसे मिल चुके थे। ये नारद जिसे मिल लेते हैं ना, वो विवाह करना भूल जाते हैं। और विवाह के पहले एक बार तो नारद जी से मिल ही लेना चाहिए। नारद मुनि मिल चुके थे प्रियव्रत को, जितने लोगों को मिले शास्त्र में, गत वर्ष यहां पर नारद हरियेश्वर संवाद हुआ था, दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र बड़े हुए, 5-7 साल के, दक्ष प्रजापति ने कहा आप लोग एक काम करो, थोड़ी तपस्या करके शुद्ध हो जाओ, आप नारायण सरोवर में जाओ, तपस्या करके शुद्ध होकर आना, तुम 10,000 के लिए मैं लड़की तैयार करके रखूंगा, आकर विवाह करेंगे। दक्ष प्रजापति ने 10,000 पुत्रों को भेजा, 10,000 गए तपस्या करके, वापस लौट रहे थे, नारद मुनि ने बैठे बैठे देखा 10,000 का लौट आ रहा है, और वो भी यूथ पीचिंग है, यूथ को प्रीच करना है। तब नारद मुनि ये अवसर देखकर आए, 10,000 को कहा कि कहां जा रहे हो, बोले हम लोग घर पर जा रहे हैं, शादी करेंगे। अच्छा शादी करोगे, जानते हो कुछ? बोले उसमें क्या जानना। नारद मुनि ने 10 प्रश्न पूछा, 10 मिनट भी नहीं लगा। कथम राष्ट्रम पुरुषम नदी उभयतो वाहम काल चक्र स्वयं भ्रमिम, 10 प्रश्न। और 10 प्रश्न सुनने में 10 मिनट भी नहीं लगा। नारद मुनि के 10 प्रश्न सुनकर ये 10,000 ने कहा, गुरुजी अब क्या करना है? बोले काम करो, ये सफेद निकाल कर लाल पहन लो, सैफरन, ब्रह्मचारी बना दिया। अब घर पर नहीं गए, जंगल में चले गए। लेकिन दक्ष भी आखिर दक्ष था, सोचा कोई बात नहीं, 10,000 को ब्रह्मचारी बना दिया, मंदिर में बिठा दिया और 1,000 पुत्र उत्पन्न किया, शवलाश्व। ये हरियश्व थे, अब शवलाश्व। और 1,000 को फिर से तपस्या करने भेजा, और मैं आपके लिए लड़की तैयार रखता हूं, जल्दी जल्दी आ जाना। ये सब लोग तपस्या करने गए, वापस लौट रहे थे, फिर से नारद मुनि को पता चला 1,000 का लोट आ रहा है। न एडवर्टाइजमेंट करना है, न पास बांटने हैं, कुछ नहीं, बिना मेहनत की नारद मुनि आए। और आकर 1,000 को, वहां तो 10 मिनट लगी थी, यहां 1 मिनट। क्या कहा? देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति वह कार्य करते हैं जो बड़े भाई ने किया है। आपके बड़े भाइयों ने क्या किया है? बोले वो तो ब्रह्मचारी हो गए, तो आप क्यों मूर्ख बन रहे हो? बोले ठीक है, 1,000 ब्रह्मचारी। दक्ष प्रजापति वासवशील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस संसार में सब लोग दक्ष हैं। दक्ष का अर्थ होता है एक्सपर्ट। संसार के लोग किस में एक्सपर्ट हैं? पुत्र उत्पन्न करने में। और कुछ करे या ना करे, लेकिन 2-5 तो हो ही जाते हैं। संसार के लोग पुत्र उत्पन्न करने में दक्ष हैं, लेकिन हरे कृष्ण संस्था वालों को चाहिए कि नारद मुनि की तरह प्रचार करें, संसार के लोग उत्पन्न करते जाए और हम लोग भक्त बनाते जाए हैं सबको, तब बैलेंस ठीक रहेगा। लेकिन दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, ये तुम्हारा नारद देखो, मैं जितना पैदा कर रहा हूं सबको ब्रह्मचारी बना रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो वो कार्य तो अच्छा कर रहा है, मैं उसे रोक नहीं सकता हूं, लेकिन एक प्लान दे सकता हूं। बोले क्या? एक काम करो, अब तक पुत्र को जन्म दिया ना, अब पुत्री को जन्म दो, उसके पांच भी नहीं भटकेगा है नारद। तब दक्ष प्रजापति ने 16 कन्या को जन्म दिया। लेकिन दक्ष प्रजापति ने नारद मुनि को श्राप दे दिया, क्या तुम एक जगह पर बैठकर व्यासपीठ के ऊपर बैठकर प्रवचन करते हो तब हमारे पुत्र ब्रह्मचारी बनते हैं ना, जाओ मैं श्राप देता हूं कि एक जगह पर 2 घड़ी से ज्यादा टिक नहीं पाओगे, श्राप देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आचार्य श्री प्रभुपाद जी को पूछा गया कि आप 70 साल की आयु में प्रचार प्रारंभ किए और कुछ ही क्षणों में दुनिया में 10 चक्कर लगाए, पूरे दुनिया में भ्रमण किए, एक स्थान पर आधे दिन से ज्यादा नहीं रहते, इसका कारण क्या? आप इतना क्यों भटक रहे हो? बोले हम लोग नारद की परंपरा में है, ये नारद का श्राप हमारी परंपरा में उतरा है। जैसे नारद को श्राप है कि एक जगह पर नहीं टिक सकते हैं, वैसे हम प्रचार करने वाले एक जगह पर नहीं रह सकते हैं। तो इस प्रकार नारद मुनि जिसे मिल जाते हैं उसे ब्रह्मचारी बनाकर रहते हैं, ये प्रियव्रत को मिल चुके थे। और प्रियव्रत ने कहा, मैं विवाह नहीं करूंगा। मनु महाराज ढूंढ रहे थे कौन इसे भड़का रहा है। जब राज्य में अराजकता छा गई तब ब्रह्मा जी अनेक देवता गंधर्वों के साथ इस प्रियव्रत के पास आए, और उस समय नारद मुनि उसके साथ खड़े थे। ब्रह्मा जी ने मनाया प्रियव्रत को, बेटा विवाह कर लो। प्रियव्रत ने कहा, यदि विवाह कर लूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो यदि हृदय में वास्तविक वैराग्य है, यदि तुम्हारे हृदय में भक्ति है, तो वो भक्ति हृदय से होनी चाहिए, बाहर से वैराग्य नहीं, वैराग्य अंदर से होना चाहिए। और गृहस्थ जीवन में रहकर भी तुम भक्ति कर पाओगे, मैं वादा करता हूं। ब्रह्मा जी के कहने पर राजा प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री वारहस्वती के साथ विवाह किया, और वारहस्वती के गर्भ से 1 पुत्री और 10 पुत्र को जन्म दिया प्रियव्रत ने। और उस 10 पुत्रों में से प्रथम 3 पुत्र को प्रियव्रत ने ब्रह्मचारी बना दिया, सोचा मैं तो नहीं बन पाया लेकिन मेरे पुत्र को बना दूं। महावीर, कवि और संबत, ये तीन पुत्रों को, प्रियव्रत के ये तीन पुत्र ब्रह्मचारी हुए। राजा प्रियव्रत का चरित्र बहुत अद्भुत है, आप इस घटना को सुनकर चौंक जाओगे। एक दिन की बात, राजा प्रियव्रत को हुआ कि मैं सूर्य के पूरे भाग को प्रकाशित कर दूंगा, इसलिए राजा प्रियव्रत सूर्य का पीछा करने लगे। और सूर्य का पीछा करते करते राजा प्रियव्रत ने इस संसार की 7 प्रदक्षिणा लगाई, 7 बार घूम गए। राजा प्रियव्रत का जो रथ था बहुत विशाल था, उनके चक्के बहुत विशाल थे, और राजा प्रियव्रत ने इस संसार में 7 प्रदक्षिणा की। उस रथ के चक्के की लीक से बहुत बड़े बड़े समुद्र का निर्माण हो गया। होता है ना, जब कीचड़ होता है उसके ऊपर जब टायर चलता है तो बीच में खड्डा हो जाता है, बाजू में ऊपर उठ जाता है। इतने विशाल चक्के थे, तो जहां चक्के गिरे वह समुद्र हो गए और बाजू में जो था वह आइलैंड हो गया। वैसे 7 समुद्र और 7 द्वीप का निर्माण हुआ राजा प्रियव्रत के उस रथ के चक्के से। कहते हैं जो बिल्कुल बीचों बीच, आप देखिए 7 समुद्र हैं और 7 द्वीप हैं, तो बीच में सबसे मिडल में जो है वह एक आइलैंड होगा। वो 7 द्वीप में सबसे बीच का जो द्वीप है, उस द्वीप का नाम हुआ जम्बू द्वीप। और उस जम्बू द्वीप के आजू बाजू में जो टायर चला राजा प्रियव्रत के रथ का चक्का, जिससे समुद्र बना, तो जम्बू द्वीप के आजू बाजू में जो समुद्र बना वह खारे पानी का समुद्र हुआ। उस खारे पानी के समुद्र के बाद जो द्वीप हुआ, उस द्वीप का नाम हुआ लक्षद्वीप। और उस लक्षद्वीप के बाहर जो समुद्र निर्माण हुआ, वह समुद्र गन्ने के रस का समुद्र बना, विशाल मात्रा में गन्ने का रस। तत्पश्चात तीसरा द्वीप बना, उस द्वीप का नाम शालमली द्वीप। और उस तीसरा जो समुद्र था वह मदिरा का समुद्र हुआ। चौथा द्वीप निर्माण हुआ, उस द्वीप का नाम कुक्षद्वीप। और उसके आजू बाजू में जो समुद्र बना वह घी का समुद्र हुआ। 5वां द्वीप बना जिसका नाम क्रोच द्वीप, और उसके आजू बाजू में जो समुद्र हुआ वह दूध का समुद्र हुआ। 6ठा द्वीप जिसका नाम शाक द्वीप, और उसके आजू बाजू में समुद्र छाछ का समुद्र हुआ। 7वां द्वीप हुआ जिसका नाम पुष्कर द्वीप, और उसके आजू बाजू में एंड में जो समुद्र हुआ वो मीठे BMC पानी का समुद्र हुआ, मीठे जल का। इस प्रकार से 7 द्वीप और 7 समुद्र का निर्माण। कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी फेंकने लगे अभी, लेकिन आप गाने तो कितने बार गा चुके हो, 7 समुद्र पार में तेरे, थोड़ा तो विश्वास करो। अक्सर तो बोलते रहते हैं हम कि 7 समंदर यही है, 7 समंदर यही है, 7 समंदर और 7 द्वीप। तो इस प्रकार से 7 द्वीप बने। और जब महाराज प्रियव्रत बूढ़े हो गए, तो एक व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो अपनी जो प्रॉपर्टी है अपने पुत्रों में बांट देता है। महाराज प्रियव्रत ने यह 7ों द्वीप अपने 7ों पुत्र को दे दिया। महाराज प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र का नाम आग्निग्र था, और जम्बू द्वीप के राजा आग्निग्र हुए। आग्निग्र का विवाह पूर्वचीति के साथ हुआ, और आग्निग्र के 9 पुत्र हुए, और आग्निग्र ने जम्बू द्वीप को 9 भाग में बांट दिया। और आग्निग्र के सबसे बड़े पुत्र हुए राजा नाभि, और राजा नाभि को उस जम्बू द्वीप का 1 हिस्सा दे दिया, और उस हिस्सा का नाम हुआ अजनाभ वर्ष। और आगे चलकर राजा आग्निग्र के पुत्र होंगे राजा नाभि और नाभि के पुत्र हो गए ऋषभदेव और ऋषभदेव के पुत्र हो गए राजा भरत। और राजा भरत यही अजनाब वर्ष के राजा बनेंगे और तब इस अजनाब वर्ष का नाम होगा भारत। तो ये भारत का एक हिस्सा आपको गूगल मैप आपको दिखा दिया कि इस प्रकार से हमारा भारतवर्ष निर्माण हुआ। आग्निग्र के पुत्र नाभि हुए और नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ हुआ। नाभि और मेरु देवी का विवाह हुआ, आप सब परंपरा याद है ना। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, मनु महाराज के प्रियव्रत, प्रियव्रत के आग्निग्र और आग्निग्र के नाभि। और राजा नाभि ने मेरु देवी के साथ विवाह किया। विवाह किया, बहुत समय बीत गया परंतु किसी भी प्रकार की संतान उत्पन्न नहीं हुई। तब संतान प्राप्ति करने के लिए एक दिन राजा नाभि ने ब्राह्मणों को बुलाया। देखिए हमारे इतिहास में जब जब संतान नहीं हुई है तब तक वैष्णवों को ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करवाए हैं, फिर चाहे राजा दशरथ हो चाहे राजा नाभि हो। सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर बात कहते हैं, आइए भगवान ऋषभदेव के जन्म को हम संगीत के साथ।
श्री शुक फिरी बोले यह बानी,
श्री शुक फिरी बोले यो बानी,
सुनिए नृपति परीक्षित ज्ञानी,
सुनिए नृपति परीक्षित ज्ञानी।
राजा नाभि मेरु देवी तिय,
राजा नाभि मेरु देवी तिय।
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजा नाभि और मेरु देवी बहुत समय हो गया विवाह हुए परंतु संतान उत्पत्ति नहीं हुई। राजा नाभि ने मेरु देवी ने ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ प्रारंभ करवाया।
राजा नाभि मेरु देवी तिया,
राजा नाभि मेरु देवी तिया,
निज संतानी निमित्त यज्ञ किया,
सुंदर यज्ञ प्रारंभ हुआ है।
अधिक श्रद्धा ते नृप यज्ञ कीनो,
अधिक श्रद्धा ते नृप यज्ञ कीनो।
राजा नाभि और मेरी देवी श्रद्धा के साथ यज्ञ कर रहे हैं। भक्तों सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्रद्धा युक्त यज्ञ। इस संसार में भक्ति को छोड़कर अन्य जो भी कार्य है, अन्य जो भी साधन है, उस साधन में श्रद्धा अपेक्षित है। आप कितना भी बड़ा दान करो परंतु यदि श्रद्धा से दान नहीं करते हो तो वह दान का फल नहीं मिलता है। आप कितना भी बड़ा यज्ञ करो परंतु श्रद्धा से यदि न करो तो उसका फल नहीं मिलता है। परंतु राजा नाभि और मेरु देवी श्रद्धा से यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ में आहुति दे रहे हैं।
अधिक श्रद्धा ते नृप यज्ञ कीनो,
अधिक श्रद्धा ते नृप यज्ञ कीनो,
अधिक श्रद्धा ते नृप यज्ञ कीनो,
अधिक श्रद्धा ते नृप यज्ञ कीनो।
प्रभु से वक जुत दर्शन दीनो,
प्रभु सेवक जुत दर्शन दीनो,
प्रभु सेवक जुत दर्शन दीनो,
प्रभु सेवक जुत दर्शन।
राजा नाभि ने श्रद्धा से जब यज्ञ की आहुति दी, ब्राह्मण भी पवित्र है, शुद्ध मंत्र है, शुद्ध होम हवन सामग्री है, जब सभी ओर से शुद्धता है, पवित्रता है, श्रद्धा है, और यह सुंदर यज्ञ के द्वारा भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए, और उसी समय भगवान विष्णु राजा नाभि के यज्ञ में प्रकट हो गए।
हरे राम 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 राम,
हरे राम 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 सीता 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 राम राम,
विष्णु प्रकट हुए हैं, भगवान की अद्भुत छवि है, अद्भुत सुंदरता।
मन अरुणेन देन आनंदा,
अरुणेन देन आनंदा,
अद्भुत, भगवान सभी ओर से आनंदित है,
प्रभु के अंग अंग सुषकंदा,
प्रभु के अंग अंग सुषकंदा,
प्रभु प्रकट हुए हैं, प्रभु सभी ओर से आनंदित हैं, भगवान के सभी अंग सभी अंगों से आनंद छलक रहा है, भगवान के मुख से भी आनंद है, भगवान के हाथ में भी आनंद है, भगवान के चरण में भी आनंद है, सभी ओर से आनंदित, इसी को तो भगवान कहते हैं। संसार के सब लोग सभी एंगल से दुखी दिखते हैं, चाहे आंखों से हो मुख से हो, परंतु प्रभु प्रकट हुए हैं और कैसी छवि है,
चार भुजा भी तांबर पहने,
चार भुजा भी तांबर धारे,
चार भुजा है, पीतांबर धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म कौस्तुभ मणि धारण किए हैं, और भगवान की अद्भुत छवि,
आयुध करई वनमाला पहने,
आयुध करई वनमाला पहने,
शीश मुकुट अलग के घुंघराली,
शीश मुकुट
और उसी समय श्री भगवान वाचक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान बोलने लगे, क्या बोले,
हे दुज तुम मांगो दुर्लभ वर,
हे दुज तुम भाग्यो दुर्लभ,
भगवान ने कहा, हे नाभि राजा, हे मेरु देवी, आपके द्वारा ब्राह्मणों की सेवा हुई है, आपके द्वारा यज्ञ हुआ है, इस यज्ञ से मैं प्रसन्न हूं, बताइए आपको क्या चाहिए, आपको जो चाहिए वो मांग लो। तब राजा नाभि और मेरु देवी दोनों हाथ जोड़ते हैं, दोनों हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में विनंती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे पास सब कुछ है, राज रजवाड़े नौकर चाकर, परंतु एक वस्तु की कमी है प्रभु, हमारे आंगन में एक भी संतान नहीं है, आपको यदि देना ही हो तो आप जैसी एक संतान हमें दे दीजिए। तब भगवान कहते हैं
हे दूज तुम मांगो दूर लभवर,
हे दूज तुम मांगो दूर लभवर।
हे दूज, हे राजन अभी, वैसे तो आपने जो मुझसे मांगा है बहुत दुर्लभ है, क्योंकि आपके जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है, लेकिन तुमने ब्राह्मणों की सेवा की है और उस ब्राह्मणों की सेवा करने के कारण मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि मैं ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करता हूं। हे राजा नाभी, ब्राह्मण मेरे मुख है, मैं ब्राह्मणों के मुख से अन्न ग्रहण करता हूं, मैं ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करता हूं, मैं भक्तों से बहुत प्रेम करता हूं, उतना प्रेम न तो मैं लक्ष्मी से करता हूं, न ब्रह्मा से करता हूं, न शिव जी से करता हूं, जितना प्रेम मैं मेरे भक्त ब्राह्मण से करता हूं। हे राजन, तुमने मेरे भक्त की सेवा की है, इसलिए यद्यपि ये दुर्लभ वर है, फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। और एक बात ध्यान से सुनो, तुम चाहते हो ना कि मेरे जैसा पुत्र तुम्हें चाहिए, परंतु इस संसार में मेरे जैसा और कोई नहीं है, क्योंकि श्रुतियों ने कहा है, वेदों में लिखा है, भगवान कैसे हैं, एको एव अद्वितीय, भगवान एक ही है और भगवान जैसा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। इस संसार में मेरे जैसा दूसरा और कोई नहीं है, और तुम्हें मेरे जैसा पुत्र चाहिए, क्योंकि तुमने मेरे भक्त को प्रसन्न किया है, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा।
हरे राम 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 सीता राम राम राम,
हरे राम राम राम।
इतना कह के भगवान विष्णु चले गए, प्रकट हो गए।
हरे राम 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 सीता राम राम राम,
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 हरे राम 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 सीता राम,
भगवान का वचन कभी विफल नहीं होता है। धीरे धीरे करके महीने बीतते गए, 9 महीना बीता है, वह दिन करीब आया, नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान जन्म लेने वाले थे। जैसे ही भगवान का जन्मदिन करीब आया, काल समस्त गुणों से युक्त हो गया, नदियों में पानी बहने लगे, सभी वृक्षों के ऊपर फूल आने लगे, बादल गरजने लगे, संतों के हृदय में प्रसन्नता हुई, असुरों के मन में क्षोभ हुआ, उसी समय दिगंबर सन्यासियों को शिक्षा देने के लिए, ऊर्ध्वरेता मुनियों को उपदेश देने के लिए, पृथ्वी के समस्त जीवों का कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान विष्णु जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे से सूर्य प्रकट होता है, जैसे पूर्ण कला से युक्त चंद्रमा प्रकट होता है, जैसे सीनी के घर से सिंह जन्म लेता है, वैसे मेरु देवी के हृदय घर से भगवान ऋषभ देव ने जन्म लिया। श्री ऋषभ देव भगवान की, श्री ऋषभ देव भगवान की
जय,
श्री ऋषभ देव भगवान की
जय।
तो आज ऋषभ देव का जन्म हुआ है, साक्षात भगवान ही धरा धाम पर आए हैं, सब लोग प्रेम से गाइए,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Hare
Hare Krishna, Hare Krishna
Krishna,
Krishna, Hare Hare
Parabrahma
Hare Rama, Hare
Rama Bhagavan Vishnu is Bhula Ram par aaye hain भगवान ऋषभ का
हरे हरे
हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा
कृष्णा हरे हरे
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Bol, Hare Bol,
Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Jai Ho,
Hare Rama,
Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Rama
Rama, Rama Hare Hare. Krishna Hare Hare
Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama
Rama Rama Hare Hare
Hare Krishna Hare Krishna
श्री भगवान ऋषभदेव की ऋषभदेव भगवान की ऋषभदेव भगवान की भगवान का जन्म ऐसे होता है और हमारा जन्म रोते रोते होता है. यही अंतर है, यही अंतर है हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में. हम जब इस संसार में आए तो रोते रोते आते हैं और भगवान आते हैं तो हंसते हंसते और आकर तुरंत अपने माता पिता को उपदेश भी देने लगते हैं. भगवान ऋषभदेव इस संसार में आए और जन्म से सभी गुणों से सभी लक्षणों से युक्त थे, सभी गुणों से श्रेष्ठ थे, सभी अंगों से श्रेष्ठ थे. उनकी आंखें भी श्रेष्ठ, उनके कान भी श्रेष्ठ, उनके हाथ भी श्रेष्ठ, उनका रंग भी श्रेष्ठ. और श्रेष्ठ को संस्कृत में ऋषभ कहा जाता है. ऋषभ देव का सब कुछ श्रेष्ठ था इसलिए उनका नाम ऋषभ हुआ. नाम ऋषभ रखा गया और बचपन से ही बड़े बड़े पराक्रम भागवत में सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं. एक बार राजा नाभि के वर्ष में, अजनाब वर्ष में इंद्रदेव ने वर्षा नहीं दी. भक्तों, इस संसार में जो बारिश होती है उस बारिश के देवता है इंद्र। भगवान ने जल विभाग इंद्र को सौंपा है, इंद्र देवता बारिश पहुंचाते हैं। तो राजा नाभि से ईर्ष्या होने के कारण इंद्रदेव ने बारिश नहीं की। सब लोग दुखी हुए, हाहाकार मच गया। उस समय यह छोटे बालक ऋषभ ने कहा, पिताजी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बालक ऋषभ ने अपने योग के प्रभाव से बिना इंद्र की इच्छा, इंद्र को पता भी नहीं था, और इस भारत वर्ष में, इस अजनाब वर्ष में बहुत सुंदर बारिश हुई। सबके द्वारा जय जयकार हुआ। इंद्र को पता चला कि यह कोई साधारण बालक नहीं, ये तो हमारे प्रभु है, ये तो भगवान है। तब उस बालक ऋषभ को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि अब ये बालक नहीं रहे थे, बड़े हो गए थे, तो उस समय इंद्र जयंती नाम की कन्या को लेकर आए। राजा नाभि को प्रस्ताव रखा और राजा नाभि ने इंद्र के द्वारा लाई हुई जयंती नाम की कन्या का विवाह उस ऋषभ के साथ करा दिया। भगवान ऋषभ देव का विवाह जयंती नाम की कन्या के साथ हुआ और भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र को जन्म दिया देवी जयंती ने। भगवान ऋषभ देव के पुत्र भी अद्भुत थे। भगवान ऋषभ देव का प्रथम पुत्र जिनका नाम भरत था, और ये जो हम आज से ऋषभ देव की शिक्षा जो सुनने जा रहे हैं, ये ऐसी शिक्षा है, ऐसी शिक्षा है, इस शिक्षा को सुनकर कुछ लोग ब्रह्मचारी बने, कुछ भक्त बने और कुछ राजा बने, लेकिन जो भी बने अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बने। यहां से भी कुछ लोग जाकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे या मंदिर में ब्रह्मचारी बनेंगे, जो भी बनना है आप बनिए, लेकिन यदि इस शिक्षा को सुनकर आप जो भी बनोगे उस फील्ड में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। जैसे आप ऋषभ देव के 100 पुत्र ने द टीचिंग ऑफ लॉर्ड ऋषभ देव इस उपदेश को सुना, सुनकर पहला पुत्र जिसका नाम भरत था इस दुनिया का राजा हुआ, पूरे भारत का। मैंने पहले ही कहा यह भारत का नाम पहले अजनाभ वर्ष था, लेकिन राजा भरत ने ऐसा शासन किया अपने पिता के उपदेश को सुनकर, ऐसा शासन कि दुनिया के लोग अजनाभ नाम भूल गए और राजा भरत के नाम से इस सृष्टि का नाम भारत हुआ, भारत नाम रखा गया। यदि राजा भी बनना हो, बिजनेसमैन बनना हो, तब भी यह शिक्षा को सुननी चाहिए। और 81 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण बने और भगवान ऋषभ देव के बाकी के 9 पुत्र 9 राजकुमार हुए और बचे 9 पुत्र इस संसार के बहुत बड़े योगेश्वर हुए, जो 9 योगेश्वर के नाम से विख्यात हुए। भागवत में इसकी कथा आती है। ये 9 पुत्र का नाम कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। इस प्रकार से ये भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्रों का जन्म हुआ। और भगवान ऋषभ देव ने एक दिन सोचा कि मेरे 100 पुत्र है, और एक पिता का कर्तव्य होता है अपने पुत्र को उपदेश देना, और जो गुरु होते हैं, जो पिता होते हैं, मौका देखकर, अवसर देखकर अपने शिष्य को या पुत्र को ज्ञान दे देते हैं। वैसे एक दिन भगवान ऋषभदेव ने बहुत सुंदर मौका चुना, बहुत सुंदर अवसर आया। ब्रह्मावर्त नाम के देश में ये 100 पुत्र एक साथ मिले, नहीं तो 100 को एक साथ बिठाना। आप कभी मीटिंग में अटेंड किए होंगे तो पता होगा आपको, हम तो करते ही रहते हैं, आज 2 आए हैं तो वो नहीं आए हैं, उस दिन वो आए तो ये नहीं आए, कोई ना कोई तो एब्सेंट होता ही है। लेकिन भगवान ऋषभ देव को एक ऐसा अवसर मिला जिसमें 100 पुत्र एक साथ, ब्रह्मावर्त नाम के देश में ये 100 पुत्र एक साथ मिले। और उस 100 पुत्रों को अवसर देकर भगवान ऋषभदेव ने जो उपदेश दिया है शास्त्र के पत्ते में, इतिहास में वह दिव्य उपदेश हो गया। उसी उपदेश की कथा आने वाले दिनों में हम सुनेंगे, परंतु सबसे पहले ये उपदेश क्या है, कैसा है, इसके बारे में अनेक आचार्यों ने कहा है। भगवान ऋषभदेव के द्वारा जो उपदेश दिया गया, परमहंस विज्ञान, परमहंस उपदेश था वह, और ऐसा उपदेश जो इस संसार की सभी आसक्तियों से मुक्त करके व्यक्ति को पूर्ण रूप से सुखी बना दे। और वास्तव में भगवान ऋषभदेव ने यह उपदेश मात्र अपने पुत्र को ही नहीं, एक संत लिखते हैं कि अपने पुत्र को माध्यम बनाकर भगवान ऋषभदेव ने इस संसार की पूरी जनता को उपदेश दिया। आज भी वही उपदेश हम सुनने जा रहे हैं, केवल वाणी हमारी है, स्पीकर हम मात्र स्पीकर है, इसे बोलने वाले तो भगवान ऋषभदेव हैं। उपदेश प्रारंभ होता है आपके श्लोक से, श्री ऋषभ उवाच, नायं देहो देह भाजान त्रिलोके, कष्टान कामान हते वीट भुजाम्ये,
कष्टान कामान हते वीट भुजाम्ये,
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्,
तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वम्,
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्,
शुद्धे तस्माद् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्।
भगवान ऋषभदेव के द्वारा प्रदत्त ये उपदेश हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। उसके पहले एक छोटी सी जानकारी, आपके पास जो श्लोक दिए गए हैं एक कागज के पत्ते पर, ये श्लोक कोई साधारण श्लोक नहीं है। जैसे हमने गत सत्र में हमने आपको बताया, वेद व्यास जी के द्वारा वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, ये श्लोक वेद व्यास जी के द्वारा उच्चारित है, वेद व्यास जी द्वारा लिखे गए हैं। श्रीमद् भागवत के ये श्लोक, क्योंकि भागवत ग्रंथ यहां पर सबको देना संभव नहीं है, इसलिए उस भागवत का एक हिस्सा श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय को निकालकर आपके हाथ में दिया है। और यहां पर जो भी लेक्चर होगा वो श्लोक के आधारित होगा, कि आपके हाथ में सबूत है, प्रमाण है। ऐसा नहीं है कि प्रभु जी अपने मन की बात कर रहे हैं, अपने बुद्धि की बात नहीं, भगवान ऋषभदेव के उस उपदेश को एज इट इज आपके सामने हम दोहराएंगे, आपको मात्र समझाएंगे, क्योंकि वह संस्कृत में है। तो सबसे पहले ऋषभ उवाच, भगवान ऋषभदेव बोले, क्या बोले, तो इस श्लोक में एक शब्द है पुत्र का। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को संबोधन दे रहे हैं, हे मेरे पुत्रों। भगवान ऋषभदेव अभी पुत्र तो सुनने के लिए बैठे हैं, भगवान बोलने के लिए बैठे हैं, तो उसमें पुत्र बोलने की क्या जरूरत है। जैसे आप लोग सुनने के लिए यहां आए हो तो मुझे बार बार आपका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सुनने बैठे हो, मैं बोलने बैठा हूं। परंतु भगवान ऋषभदेव सबसे पहले प्रारंभ में है पुत्र का, हे मेरे पुत्र, हृदय से। एक आचार्य कहते हैं इसका अर्थ है प्रतारणाम सुचियन स्नेहेन संबोधयति। भगवान ऋषभदेव स्नेह से, प्रेम से बोल रहे हैं। अप्रतारणाम, प्रतार माने क्रोध से नहीं, गुस्से से नहीं। बच्चों को ठीक से बिठाइए, बच्चों को एंट्री नहीं है, यहां से डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक से बैठो। हरे कृष्णा कृष्णा भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश दे रहे हैं, एक पिता अपने पुत्र को उपदेश दे रहे हैं। देखिए उपदेश कैसे दिया जाता है। इस संसार में प्राय जब कोई व्यक्ति उपदेश देता है तो क्रोध से बोलता है, और उसमें भी पिता अपने पुत्र को प्रेम से नहीं समझाते हैं, ताड़न करके डांटते हुए। परंतु यहां भगवान ऋषभदेव स्नेहेन संबोधयति, स्नेह से प्रेम से, बेटा हे मेरे पुत्रों, इस संसार में आप कितना भी क्रोध करोगे, गुस्से से बोलोगे, वह क्रोध और गुस्से से बोली हुई बात को कोई नहीं सुनेगा। प्राय हम लोग सोचते हैं कि हम गुस्से से बोलेंगे, क्रोध से बोलेंगे तो वह समझ जाएगा, कभी नहीं, उल्टा मामला बिगड़ जाएगा। क्रोध से कभी किसी का ठीक नहीं हुआ है, क्रोध से प्रलय होता है, क्रोध से टूटता है, जोड़ता कुछ नहीं है। और क्रोध करने वाला व्यक्ति अपना तो बिगाड़ता है, अपने साथ दूसरों का भी दिमाग बिगाड़ता है। संसार में यदि आप कुछ करना चाहते हो, कुछ किसी को समझाना चाहते हो, तो स्नेह से प्रेम से समझाना चाहिए। भगवान ऋषभदेव प्रेम से अपने पुत्र को कह रहे हैं, और इसी के साथ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, हे पुत्र का इति कृपायाम। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश देना शुरू करे उसके पहले पुत्र का शब्द बोल के कृपा आशीर्वाद दिया। यहां पर एक सिद्धांत प्रकट हुआ कि जब तक बोलने वाला आशीर्वाद न दे, कृपा न दे, तब तक सुनने वाला उसे अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता है। केवल किसी वक्ता के मुख से सुन लेना, केवल सुनने से ही हम ज्ञानी नहीं होते हैं। जिसके मुख से सुन रहे हैं उसकी कृपा की भी आवश्यकता होती है, और बिना कृपा के वह ज्ञान हमारे जीवन में अप्लाई नहीं होता है। कृपा चाहिए। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि क्या अब ये गर्मी में जाकर बैठना, और वो भी भीड़ भाड़ में ऐसे बैठ जाना, उसे तो अच्छा है सीढ़ी तो बनती है, घर पे जाके आराम से ऐसे में बैठकर सुनेंगे सोते सोते, और उसमें भी रिमोट हाथ में, जब प्रभु जी को स्टॉप कराना चाहे कर दिया और भोजन कर लिया, शुरू कराए, सब अपने हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, तीन तीन कैमरे लगे हैं, इतना कुछ है, क्या सुनना, जाकर घर पे सीडी सुन लेंगे। भागवत का एक अकाट्य सिद्धांत है, जब कोई वक्ता भागवत के बारे में भगवत कथा कहता है तो उनके जो शब्द हैं उनके हृदय से स्पर्श होकर निकलते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई वक्ता बोलता है तो उनके हृदय में भगवान होते हैं, और उस भगवान के चरण की रज से स्पर्श होकर वह शब्द निकलता है, और भगवान के चरण की वह पराग रज उड़ती है, और सुनने वाले के कान के माध्यम से वह पराग रज हृदय में चली जाती है। जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को कॉपी पेस्ट किया। बोलने वाला क्या करता है, अपनी चेतना दूसरों को बांटता है। तो ये पराग रज जो है, आप प्रवचन में जाकर बैठोगे तब उड़ेगी, सीढ़ी में से तो पराग रज उड़ती नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब हम प्रयास करके, कष्ट करके किसी वरिष्ठ के पास जाते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, वो हमें देखते हैं, देखने मात्र से आशीर्वाद मिल जाता है। अब ऐसा मत समझो चमत्कार करेंगे, बाबा जी की तरह हैं, फल निकाल कर देंगे, जादू टोना होगा, नहीं, गुरुदेव देख लेते हैं, देखने मात्र से, दर्शन पवित्र करो, यही तुम्हारे। गंगा र परश हैल पश्चात पावन,
गंगा र परश हैल
नरोत्तमदास ठाकुर
पश्चात पावन।
हमारे वैष्णव समाज के बहुत बड़े आचार्य हो गए, भक्तों की, वैष्णव की महिमा बताते हुए कहते हैं,
गंगा र परश हैल
पश्चात पावन
गंगार
दर्शन पवित्र करो एही तो मार्ग दर्शन
पवित्र करो एही तो मार्ग
तो इस संसार में लोग पवित्र होने के लिए गंगा में जाते हैं। लोग पवित्र होना चाहते हैं, कुंभ मेला लगता है गंगा में, यहां से देहरादून में बैठते हैं, हरिद्वार जाते हैं और देहरादून में बैठकर हरिद्वार जाकर गंगा में उतरकर स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद पवित्र होते हैं। गंगा में व्यक्ति स्नान करने के बाद पवित्र होता है, परंतु भक्तों को एक बार देख लीजिए आप पवित्र हो जाओगे। इसलिए भक्तों के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए, ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई,
ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई,
ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, पतित पावन तुमा बिन के हुनाई,
पतित पावन तुमा बिन के हुनाई,
पतित पावन तुमा बिन के
पतित पावन तुमा बिन के हना,
ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई,
ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई,
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर,
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर,
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर,
वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर।
कृपा होनी चाहिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए कृपा। मित्रों, कृपा से ज्ञान मिलता है, आशीर्वाद से ज्ञान मिलता है। और आशीर्वाद कब मिलता है? जब हम नम्र बनते हैं, जब हम झुकते हैं। देखिए, झुकने से, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा है, अर्जुन यदि ज्ञान प्राप्त करना है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। प्रणिपातेन, झुकते हुए, गिरते हुए, अपने आप को मूढ़हीन समझकर जब किसी बड़े व्यक्ति के पास जाओगे, अपने सीनियर के पास जाओगे, तब वो आपको ज्ञान देंगे। अहंकार से छाती फुलाकर बैठकर कहोगे, हे गुरुजी ज्ञान दीजिए, अपन ज्ञान प्राप्त करने आए, उसे ज्ञान नहीं है। झुक कर, दोनों हाथ जोड़कर, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए झुकना होगा। वैसे नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में लिखते हैं, श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। जो गुरुदेव होते हैं, जो गुरु होते हैं, करुणा के सागर होते हैं, उसमें करुणा भरी होती है। लेकिन वह करुणा किस व्यक्ति के लिए है? अधम व्यक्ति के लिए। गुरु जो है अधमों के बंधु है, वहां यह नहीं लिखा विद्वानों के बंधु है, पंडित बनकर जाएंगे, विद्वान बनकर जाएंगे, उसको गुरु ज्ञान नहीं देंगे। गुरु के सामने सदैव झुक कर बैठना है, नम्र होकर जाना है, वे अधमों के बंधु है। और जब हम झुक कर जाएंगे तब उनकी कृपा होगी। देखिए कृपा का स्वभाव पानी की तरह है। पानी को यदि आप यहां से छोड़ोगे तो नीचे जाएगा कि ऊपर? नीचे। वैसे कृपा जो होती है नीचे की ओर चलती है। जो झुक कर बैठता है, जो झुक कर सुनता है, जो हम्बल होता है, उनके ऊपर कृपा होती है। तो यहां पर भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश देने के लिए उनको कृपा दे रहे हैं। इसी मुझे एक बात स्मरण हो रही है, साक्षात भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट के ऊपर रूप शिक्षा का उपदेश देने जब जा रहे थे, रूप गोस्वामी जो भगवान के परम भक्त थे, लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं सबसे पहले भगवान ने रूप गोस्वामी के हृदय में अपनी शक्ति संचारित की। यहां से साबित होता है बोलने वाला जब सुनने वाले के ऊपर कृपा नहीं करता है तो सुनने वाला सामने बैठे हुए भी कुछ नहीं समझ पाता है। होता है ना, कभी कभी प्रश्न होता है कि आप एक ही जगह पर बैठे हो, एक व्यक्ति का ही सुन रहे हो, समान सुन रहे हो, समान घंटे सुन रहे हो, लेकिन एक के हृदय में भक्ति आई, एक के हृदय में नहीं आई, एक को याद रहा दूसरे को याद नहीं रहा, कारण क्या है? कारण यह है कि गुरु की एक के ऊपर कृपा है और दूसरे के ऊपर नहीं है, भले दोनों सुन रहे हैं। महाभारत का प्रसंग आप जानते हैं, एकलव्य अर्जुन की तरह, अर्जुन की बराबरी का था, गुरु से सीख लिया, परंतु उसके पास आ भी गई थी विद्या, गुरु ने ले ली, छीन ली। कृपा चाहिए, सुनने वाले की कृपा जब तक न हो तब तक वह ज्ञान नहीं हो सकता है। हम सबको कृपा का भाजन बनना है और कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय को कोमल बनाना होगा, हम्बल बनाना होगा, और उसी का हृदय हम्बल होता है, उसी का हृदय कोमल होता है जो भगवान की भक्ति करता है। भक्त का हृदय सदैव नम्र होता है, कोमल, प्रेमेर स्वभाव, जहां प्रेमेर संबंध, सही माने मोर नहीं कृष्ण प्रेम गंध। जहां पर भगवान की पूर्ण भक्ति, जिसके हृदय में कृष्ण के प्रति पूर्ण प्रेम होता है, वह हमेशा, वह सदैव झुका हुआ रहता है। जैसे जिस वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं वह वृक्ष की डाली झुक जाती है, और अशोक वृक्ष आसो पालो फल नहीं लगते, सीधा खड़ा रहते हैं, थोड़ा भी झुकते नहीं है, बिल्कुल वही वृक्ष की डाली झुकते हैं जिस पर फल लगे। उसी प्रकार जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम रूपी फल लग गए हैं वह सदैव झुका हुआ रहता है, सदैव झुकेगा। झुकना सीखना है। आप लोग कहोगे क्या शुरू कर दिया आपने गुरु जी, परंतु यही है भागवत, यही है शास्त्र, झुकना है, और झुकने से ही कृपा प्राप्त होती है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र ने 31 बाण से रावण का वध कर दिया, 10 बाण दस मस्तक पर, 20 बाण 20 भुजा पर, और 31वां बाण रावण की नाभि पर। रावण धराशायी हो गया, अंतिम सांस गिन रहा है। उस समय भगवान राम ने अपने छोटे भाई लखन को कहा, लखन जाओ और रावण से कुछ उपदेश सुन कराओ। अब ये लखन लाल अनंत शेष के अवतार, वो तो मन ही मन क्रोधित हो रहे थे, प्रभु आप और किसी के पास जाने के लिए कहिए, ये दुष्ट रावण जिसने मेरी भाभी का अपहरण किया उससे उपदेश सुनो, उसका प्रवचन। राम ने कहा जाओ, उसे गलती हो गई है, परंतु वो बहुत ज्ञानी है, और जो बुद्धिमान होता है, चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहीं से भी ज्ञान मिले वह ले लेता है। सोना यदि, गोल्ड यदि गटर में पड़ा हो तो बुद्धिमान व्यक्ति ले लेता है, उसकी वो गंदा नहीं होता है, उसे धो डालेंगे तो साफ हो जाएगा। ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, वह शुद्ध होना चाहिए। भगवान राम ने लक्ष्मण को कहा जाओ, लक्ष्मण की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन बड़े भाई की आज्ञा कैसे ठुकरा है, वो तो गए। जैसे ही लक्ष्मण गए, रावण ने अपना मस्तक घुमा दिया, दौड़ते दौड़ते आए, भैया भैया, रस्सी बल जल गई परंतु बल नहीं गया, अभी भी उस दुष्ट का अहंकार नष्ट नहीं हुआ है, और तुम कहते हो उसे ज्ञान प्राप्त करो, मैं तो उसके पास गया, उसने अपना मुंह फेर दिया। तब राम ने कहा लखन, तुम रावण के पास गए तब कैसे गए थे? बोले कैसे, जैसे आपने भेजा वैसे गया। नहीं, फिर भी किस मुद्रा में गए थे, वहां जाकर क्या गया? बोले मैं गया और मस्तक के पास खड़ा रहा और कहा ज्ञान दो, तो उसने मुंह फेर लिया। तब भगवान समझ गए, लखन ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता है, तद्विद्वि प्रणी पाते, अपने दोनों हाथ जोड़कर झुक कर नम्र होकर उनके चरण के पास बैठकर कहो मुझे ज्ञान दो, तब मिलेगा। लखनलाल गए रावण के पास, झुके हाथ जोड़े, तब रावण ने ज्ञान दिया। सुनना है रावण ने क्या ज्ञान दिया है? भले कैसा भी हो, लेकिन मरते मरते बहुत अच्छा बात बोलकर गया है। लखन ने कहा कि मेरे भाई ने भेजा है, मुझे ज्ञान चाहिए। तब रावण ने कहा देखो लखन, मेरे जीवन में बहुत कम समय बचा है, मैं अंतिम सांस गिन रहा हूं, बस मरने की तैयारी है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, केवल दो बात जो मेरे जीवन का सार है। बोले क्या? बोले लखन, जीवन में जब अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत कर देना, अच्छा विचार आए तो उसमें थोड़ी भी देरी मत करना। लखन मेरे जीवन में बहुत अच्छे विचार आए लेकिन मैं टालता गया, अब तो जीवन बहुत लंबा है, बाद में करेंगे बाद में करेंगे। यदि वह अच्छे विचार आए और मैंने कर लिए होते तो आज मुझे मरना न पड़ा होता। रावण के जीवन में अच्छे विचार आए थे। ये जो समुद्र है ना, कितना पानी है समुद्र में, लेकिन एक ग्लास भी पी नहीं सकते हैं, कैसा आश्चर्य है ना? इतना पानी हमारे आंखों के सामने उछल रहा है लेकिन एक ग्लास भी काम का नहीं है। रावण ने सोचा था इस समुद्र को बीएमसी का पानी बना दूंगा, मीठा जल सब लोग पी सकते हैं। यदि वह कर दिया होता तो कितने लोगों की दुआ मिली होती है, कितने लोगों का आशीर्वाद से वह जीवित रहा होता। और रावण के मन में और एक विचार आया कि ये लोग कितना तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाकर स्वर्ग में जाते हैं, एक ऐसी लिफ्ट बनाऊंगा ओटीएस कंपनी वालों की, एक स्विच दबाए स्वर्ग में पहुंच जाए, चित्ररथ गंधर्व रथ के बगीचों में घूमकर जब चाहे व्यक्ति पृथ्वी से स्वर्ग से, स्वर्ग से पृथ्वी, पृथ्वी पर। सक्षम था, कर सकता था, लेकिन सोचा कि अब बहुत जीवन लंबा पड़ा है, फिर कभी करेंगे, टाल दिया। और फिर करने का अवसर कभी आया नहीं, मृत्यु आ गई। लखन जब अच्छा विचार आए तो उसे तुरंत कर देना, उसमें देरी मत करना। इसलिए एक सिद्धांत प्रकट हुआ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा फिर करेगा कब? कभी भी मृत्यु आ सकती है, फिर कब? इसलिए अच्छा कार्य आज से ही शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा उपदेश, जब बुरे विचार आए तो उसे तुरंत मत करना, उसे टालते रहना, क्योंकि मन को हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं, मन को हम दबा नहीं सकते हैं। मन एक स्प्रिंग की तरह है, कितना दबाओगे, दबाते 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 दबाते। कुछ लोग होते हैं ना सिगरेट पीते हैं, और बॉक्स को फेंक देते हैं, अब नहीं पीऊंगा, एक दिन नहीं पिया, दो दिन नहीं पिया, तीन दिन, चार दिन, दस दिन नहीं पिया, ग्यारह दिन, दस दिन का कोटा एक ही दिन में हो गया। स्प्रिंग की तरह है, लेकिन छूट जाती है। मन को दबा नहीं सकते हैं, लेकिन मन को डाइवर्ट कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति मन को डाइवर्ट करता है। रावण ने कहा, मन में जब बुरा विचार आए तो उसे दबाने की कोशिश मत करना, उसे डाइवर्ट कर देना, उसे तुरंत मत करना। लेकिन मेरे जीवन में बुरा विचार आया तो मैंने तुरंत कर दिया। जैसे सूर्पणखा शाम को, रात को 9 बजे रावण के पास आई, भैया लखन ने मेरी नाक काटी है और उसके साथ बहुत सुंदर स्त्री है। रावण 11 बजे मारीच के घर पर था और सुबह 4 बजे तो पंचवटी में आ गया। थोड़ी भी देर नहीं लगाई, बुरे काम में थोड़ी भी देर नहीं की। लखन को कहा, लखन यदि मैंने टाल दिया होता तो आज मुझे मरना न होता, इसलिए अच्छा ख्याल आए तो उसे तुरंत कर दो और बुरा विचार आए तो उसे टालकर भुला दो। तो इस प्रकार से बुरे विचार को टालना और अच्छे विचार को तुरंत करना। तो हमारे जीवन में कभी अच्छे विचार आते हैं, कभी बुरे आते हैं, परंतु अच्छे विचार को करना, बुरे विचार को नहीं करना। परंतु आज तो लोग कैसे हो गए हैं, अच्छे विचार आते हैं तो सोचते हैं अब तो जीवन बहुत बड़ा है, बाद में करेंगे, बहुत जीना है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसो, जल्दी जल्दी क्या करना है, जीना है बहुत वर्षों। तो रावण ने भी तब उपदेश दिया जब लक्ष्मण नम्र होकर गया। यहां पर भगवान ऋषभदेव संबोधन दे रहे हैं, कृपा दे रहे हैं। तो ठीक है, भगवान ऋषभदेव कृपा दे दिया, संबोधन कर दिया, अब उपदेश प्रारंभ करने जा रहे हैं, समय हो चुका है। भगवान श्री ऋषभदेव का मुख कल खुलेगा और कल से अद्भुत शिक्षा, नायम देहो देह भाजान्द्री लोके, इह लोके, नृलोक में, इस मनुष्य लोक में हमारा जन्म हुआ है, शरीर मिला है, क्यों मिला है, बहुत सुंदर कथा आएगी, बहुत सुंदर अब उपदेश आएंगे, हमारे प्रत्येक प्रश्न के जवाब, हम इस संसार में क्यों आए। गाते ना सब लोग, काहे को दुनिया बनाई, दुनिया बनाने वाले, उसका जवाब कल आएगा। हम क्यों दुखी है, अब हमको क्या करना है, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, बहुत सुंदर उपदेश भगवान ऋषभदेव देंगे। आप सबसे निवेदन है, कल से यह कथा प्रारंभ होगी। आज समरी आपको बता दूं, भागवत की महिमा हुई, भागवत का प्राकट्य, और उसके बाद प्रिय व्रत की कथा, भगवान श्री विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से मनु महाराज, मनु महाराज से प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्रह, आग्निग्रह के पुत्र हुए राजा नाभि, और नाभि के पुत्र भगवान ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव का जन्म, और सो पुत्र को जन्म देकर उसे उपदेश दे रहे हैं। और यह उपदेश वास्तविक जो प्रवचन है, वास्तविक लेक्चर सेमिनार कल से प्रारंभ होगा। भक्तों से निवेदन है, आइए सुनिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।